उन्होंने मंथन आदि करके फिर दूसरा शरीर प्रकट किया। दूसरा क्या, दो तीन शरीर प्रकट करते हैं अलग अलग जगह से मंथन डेड बॉडी, लेकिन वो डेड बॉडी को जीवित नहीं कर पाए, डेड बॉडी को जीवित नहीं कर पाए। लेकिन इसी से कभी कभी हम देखते हैं जब हमारा शरीर, बोलते हम शरीर के मालिक हम हैं, और शरीर जब मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो वो तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं, इस मुर्दा के अंदर भी आत्मा कहीं ना कहीं अलग अलग दृष्टि आत्मा होगा, वो प्रकट हो जाता है। आप देखे होंगे कहीं सड़े हुए शरीर में भी कई कीड़े प्रकट हो जाते हैं, उसी से भी बाहर शरीर को कोई छुड़ा हो शरीर। तो उन्होंने इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किए। लेकिन ये श्लोक में कहा गया है कि मुक्तता की जो बड़े बड़े ऋषि लोग ने, उन्होंने इस प्रजाओं की सुरक्षा को ध्यान देखते हुए कि उन लोग का इस प्रकार तकलीफ आया है, तो हमको कोई एक राजा बनाना चाहिए, हम खुद नहीं करेंगे, हमारा तपक्षय होगा, दूसरे राजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि महाराज अंग का वंश लोप हो जाएगा, महाराज अंग स्वयं ध्रुव महाराज के वंशज हैं, इस वंश को, इस कुल को नष्ट नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में यही विचार है, नष्ट क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें दो कारण दिया गया। बड़े बड़े विज्ञ ऋषि ये विचार करते हैं कि कुल को नष्ट क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नष्ट नहीं होना चाहिए, उसके दो कारण है, एक अमोघ वीर्य, दूसरा है केशवाश्रय। कि इन कुल में जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो सब भगवान केशव के आश्रित हैं, आश्रित है, और अमोघ वीर्य, अमोघ वीर्य मतलब शुद्धता। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं जो द्विज है, जिसका दो बार जन्म होता है, दो बार जन्म होता है, तीन जातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनका द्विज संस्कार होता है, जैन संस्कार होता है, दूसरा जन्म होता है, तो उन लोग को आपने अपने को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अगर शुद्ध ना बने रहे तो उनके कुल अशुद्ध हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध नहीं करेंगे उसके जो कई कारण बताए थे, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था कुलक्षय दोषम, कि मेरे कुल लोप हो जाएगा। कि अगर सारे ये पुरुष लोग, जो लोग सब कुल परंपरा को रक्षा करते हैं, सब मेंटेन करते हैं, वो लोग से मर जाएंगे, पुरुष लोग मर जाने के बाद स्त्री से दृष्टा सुभाष नहीं है, जायते वर्ण संक्रा संक्रा नरका एवं प्रघ्राणा। इस प्रकार संकर अगर जात होंगे, जन्म होंगे, तो कुल नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा कुल में, न लुप्त पिंडो तक क्रिया, और श्राद्ध पिंड आदि तो करेंगे नहीं, बदमा उनका कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये जो कुल की परंपराएं रीति रिवाज नष्ट हो जाएगा, और ये बहुत बड़े अपकर्म है। अर्जुन ने इस बात को सोच करके लड़ाई करना नहीं चाहते थे कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए कुल को बचाना बहुत आवश्यकता है, और जिस कुल में शुद्धता हो इस कुल को तो अवश्य बचाना चाहिए। हम लोग जो किसान खेती भी करते हैं वो अच्छे सीड ढूंढते हैं, जैसे सीड होगा, बीज होगा, ऐसे ही खेती अच्छा होगा, और सीड अच्छा ना हो तो सब गड़बड़ हो जाए, यहीं से शुरुआत होता है सब, सीड के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। हम देखते हैं गंगा जी के नदी पानी बहती है, उसके किनारे एक इमली के पेड़ हो, एक आम के पेड़ हो, एक नीम के पेड़ हो, तीनों वही गंगा के किनारे पर बढ़े हुए हैं, वही गंगा के पानी को पी करके, और तीनों बड़े हो गए, उनके फल को खाओ अलग अलग टेस्ट होगा, एक कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, क्यों, तीनों तो एक ही जगह में, एक ही धरती में, एक ही प्रकार पानी से पोषित हुए, लेकिन सीधा अलग अलग। लेकिन बीज को प्यूरिफाय करके रखना, शुद्ध बना रखना, ये बहुत बड़े उत्तरदायित्व है। विशेष करके द्विज लोगों का ये उत्तरदायित्व है। अगर अशुद्ध हो जाता है तो फिर धीरे धीरे पाप नजर आएगा, अपकर्म होगा और दूषित हो जाएगा। इसीलिए शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज ध्रुव जो थे, इतने बड़े भगवत भक्त थे, मनु वंशज थे, ब्रह्मा से मनु, मनु से ध्रुव हुए थे। और ध्रुव के वंश, ध्रुव तो बहुत बड़े भक्त थे, बचपन से ही भगवान को भस्म कर लिए, इतने बड़े भगवत आश्रित भक्त, तो उनका अमोघ वंश, अमोघ प्रिय कैसे नष्ट हो जाएगा? उसको नष्ट नहीं होना देना चाहिए। लेकिन कारण तो पहले तात्पर्य बताते हैं, क्योंकि अंग महाराज की पत्नी जो थे वो सुनीता मृत्यु पुत्री थी, तो इसलिए उनके प्रिय दोषग्रस्त हो गया, उसमें दोष आ गया। इसी दोष के कारण उनके पुत्र के रूप में, अंग के पुत्र के रूप में बैंड प्रकट हुआ। बैंड बड़े दुर्गुण वाले हुए, लेकिन फिर भी दुर्गुण वाले होते हुए भी उनको ऋषियों ने मार दिए, लेकिन फिर भी वंश को बनाए रखे। यहाँ की प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वंश परंपरा बनाए रखना है, 10 संस्कार है, गर्भधान संस्कार से लेकर के जो सब ब्राह्मण वंश हैं, वो लोग सभी संस्कार पालन करना चाहिए, तो इसमें शुद्धता बनाए रहता है, उसमें सी शुद्ध रहता है। तो 10 प्रकार के संस्कार है, गर्भधान संस्कार से लेकर के सभी को यथाविधि पालन करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो पता नहीं संस्कार कैसे होता है, क्या होता है, ना कोई ऐसे पंडित है कराने वाले आजकल सब लोग को। तो इसलिए प्रभुपाल जी ने इस क्रम में जो गृहस्थ आश्रम सृष्टि किए, तो उन्होंने दिए कि बोले कुछ नहीं, ये सब मंत्र जंतर तंत्र कितने गर्भधान संस्कार का बेस्ट विधि है, आप 50 राउंड जप करो। भगवान के भक्त हो जाना, भगवान के आश्रय ग्रहण करना, यही सबसे बड़ी संस्कार है। इस बात से प्रमाण होता है महाराज अंग बहुत प्रयास किए अपने बेटे को सुधारने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं की, उनका बस पैसा की कमी था, क्षमता की कमी था, कुछ नहीं था, चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट, एक बेटा था, उनको हर प्रकार से कई ईश्वर मास्टर लगाए होंगे, कई पंडित लगाए होंगे, कई प्रकार जगह से जो जो आप विधि विधान सब किए होंगे, लेकिन लड़का इतनी बदमाश निकला, सिखाई सिखाई तो क्या करेंगे, दुष्टता। तो उनके दुष्टता से हत होकर के, हर प्रकार से असफल रह करके दुखी होकर के चले गए। अगर वो आज नहीं गए होते, अंग महाराज अगर आपने राज्य को, आपने कुल को छोड़ करके, राजा बने रहते छोड़कर नहीं जाते, तो वेन राजा बनता, राजा नहीं बनता, तो वेन सुधरता नहीं, सुधरता। तो देखिए संस्कार क्या है, बैंड हर प्रकार से, अंग महाराज हर प्रकार से प्रयास किए बैंड को सुधारने के, हर प्रकार प्रयास करके कई प्रकार उपाय किए होंगे, संस्कार भी किए होंगे, जाग देखे बहुत तीर यज्ञ करते थे, इस लड़का उपाय था उन्होंने, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो सबसे अमोघ संस्कार, अमोघ मतलब महाशक्तिशाली, अमोघ मतलब जो कभी निष्फल नहीं होता, अमोघ अस्त्र, जो अस्त्र कभी भी बेकार नहीं जाएगा, अमोघ दृष्टि, जो दृष्टि कभी बाधित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो संस्कार है, जितने प्रकार के संस्कार है, एक संस्कार होता है सबसे बढ़िया संस्कार, कभी फेल हो ही नहीं सकता। बाकी संस्कार जाग यज्ञ पूजा ऊजा कभी फेल हो जाता है, चाहे काम करे ना करे, लेकिन ऐसी एक संस्कार है, ऐसी एक उपाय है जो कभी कस्मिन काले कोई भी देश में, कोई भी पात्र में, कोई भी समय में कभी बेकार नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। तो महासंस्कार क्या है, केशव आश्रय, भगवान के आश्रय जो भी जो संस्कार है, ये महासंस्कार। आज अगर महाराज अंग घर छोड़कर के भगवान की चरण में आश्रय नहीं लिए होते, तब उनका लड़का कभी सुधरता नहीं, उनका कुल तो ऐसे बेकार हो ही जाता, खत्म हो जाता। जब देखे कि मेरे गड़बड़ी के कारण लड़का मेरा ऐसे हुआ, तब क्या करूं, बहुत सुनाने की कोशिश नहीं हुआ तो अंत में घर छोड़कर भगवान के आश्रम में चले गए। भगवान के आश्रम में गए तो देखो ऑटोमेटिक क्या होता, ऑटोमेटिक ये कारण हुआ कि ऋषि ने उनके लड़के को राजा बनाया, तो लड़के तो वहां उधर निकला तो लड़के को मरवा दिए। मारने के बाद भी उनके अवगुण को निकाल करके उनसे भगवान प्रकट करवा दिए, लुत्फ और रस्सी प्रकट होना उनसे उनके अंश। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जंगल छोड़ के चले गए, तभी केवल छोड़ के चले गए ये बात कहना ठीक नहीं है, छोड़कर इसलिए गए हताश होकर भगवान के शरण में। तो हर प्रकार उपाय, हर प्रकार के काम जब फेल होता है तो एक अमोघ उपाय है, वो है भगवत आश्रय। भगवत आश्रय रूपी उपाय को जो अपनाया तो सारे टीका प्रति तो निश्चित होगा ही, निश्चित क्या होगा तो भगवान उसके वंश को रक्षा करेंगे, उनके इच्छा को पूरा करेंगे। अंग महाराज की इच्छा था मेरे वंश लोक हो जाएगा, क्या करूं लड़का ऐसे बदमाश निकला, यही दुखी होकर भगवान के शरण में चले गए। भगवान कोई बात मेरे पास आ गया ना, इतने हाई डोज तो फिर लड़का तो सुधार दो ना उसको, मार करके सुधार दो। ऐसे हम पहली बार सुनते हैं भागवत ने ऐसे किया, उसको मार करके उनके माता रखा भी क्यों घर में, पता नहीं संस्कार चला दो नहीं दिया उसको, इसे भगवत प्रेरणा है। उस डेड बॉडी को संस्कार नहीं करने दिया रखा, और उन ऋषि मुनियों के मन में यही आया नहीं चलो उनको जाकर पता होता कि जल गया तब क्या करते, नहीं करते किस शरीर में रखा था। तब उससे दो हम करके उनका दोष को निकाल दिए और फिर भगवान को प्रकट करा, दादा प्रकट करा। तो ये सब भगवत प्रेरणा से होता है, भगवान कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि उनके शरण में आया। तो जितने प्रकार के संस्कार है, सारे संस्कार से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली, कभी फेल नहीं होने वाला ऐसा संस्कार है क्या, भगवान की भक्ति, भगवान के आश्रय ग्रहण करना। ये भक्ति भी भगवान का आश्रय ही माना जाता है। बड़े बड़े आचार्य लोग, भक्ति का आचार्य लोग कहते हैं, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे आर सवे मरे अकारण। जो आश्रय लेकर भजन करता है कृष्ण उसको कभी त्याग नहीं दे सकते। बाकी जो आश्रय नहीं दिया, भजन इतने करे मरेगा अकारण, मर जाएगा कोई भी। तो भजन का सबसे प्रथम आवश्यकता क्या है, आश्रय ग्रहण करना। बिना आश्रय, बिना आश्रय में अगर भजन करते हैं तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं। तो किसी का केयर अप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप आश्रय लेते हैं तो आपका गुरु को अवश्य रक्षा करेंगे। वो गुरु परंपरा कभी नष्ट होने नहीं देंगे। ऐसे कहा होता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। लेकिन आजकल तो इसी चली आई रीति, वचन जाए प्राण ना जाए। लेकिन ये रीति है, उसी को उदाहरण देते हैं। भगवान ने बोले हम कैसे, ये वचन है, ये रघुकुल का रीति है, हम मर करके घर त्याग करके कितने भी कष्ट उठा करके इस कुल नियम को हम पालन अवश्य करेंगे, उसको मिटने नहीं देंगे। ये कुल परंपरा को बचाए रखना। तो आजकल तो हम कुल सिर को देखते ही नहीं है, कोई कुल देखता नहीं, ढूंढता नहीं। पहले जमाने में अज्ञात कुलस्य वासुदेवेन कदाचित, बिना कुल और सील को परीक्षा किए बिना कोई संबंध स्थापित हो नहीं सकता, ये नियम था। किसी का शादी विवाह जो एक परिवार से दूसरे परिवार का जो संबंध होता है, इसमें सबसे प्रथम जो आवश्यकता चेक करने का क्या चेक करते थे, कुल और सील। कुल होता है उनका किस कुल से है, सीट के साथ सील क्या जानते हैं, सभ्यता भद्रता, राम शील स्वभाव, उनका स्वभाव जिसका बहुत भद्र है, बहुत सभ्य है, उसको शील कहते हैं, शीलता। तो इस भद्रता सभ्यता उनका सिविलाइजेशन और उनका कुल यही दोनों चीज को देखा जाता, बाकी किसी को कोई नहीं देखता था समुद्र रखने के लिए। हम देखते हैं इसी भागवत महापुराण में मनु महाराज जो प्रथम मनु थे ब्रह्मा के पुत्र स्वयं मनु अपने पुत्री देवहूति को साड़ी देने के लिए ढूंढे, उनके लिए वर ढूंढ रहे थे। उन्होंने देवहूति इतने योग्य पुत्री थी, इतने रूप गुण से उन्नत थी, उनका वर्णन तो बहुत किया गया, इतने बड़ी उनके रूप के बारे में तो भागवत में बताया गया कि एक बार वो छात के ऊपर बल खेल रही थी, बड़े बड़े गंधर्व लोग, गंधर्व जो ब्रह्मांड में सबसे बड़े रूपवान माना गए हैं, गंधर्व लोग उनको देखे अपने ब्रेन से, उनको देख करके सेंसेस होकर गिर पड़े, आपने गाड़ी से गिरते नीचे गिर के देख कर, इतने रूप था उनके देवहूति की। तो उनके शादी के लिए स्वयंभू मनु महाराज जब ढूंढ रहे थे पात्र ढूंढते कोई ये नहीं देखे कि कोई अच्छा नौकरी किसका है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है कि नहीं, उनका घराना कैसा है, कितने कमाई, ये नहीं देखे, ढूंढ किसके पास गए मालूम है, अरे उनका मनु राज्य से छोड़ करके ढूंढते एक जंगल के अंदर कोई घर नहीं घाटी नहीं, वो सरस्वती नदी के किनारे महा निर्जन जंगल के अंदर अकेले एक खाड़ी था, खड़ा था एक पुरुष 10,000 साल से टांग उठाकर खड़ा था, गर्दन मुनि 10,000 साल से खड़े थे जंगल के अंदर तपस्या कर रहे थे, सविंग तविंग नहीं किए थे, ढंग से स्नान का कपड़ा लगा को ढंग से नहीं पहने थे, तो कोई पसंद करेगा हमको, पूरा महा जटा जुट स्केलेटन जैसे बड़ी कंकाल सार खान पान नहीं, ऐसे राजपुत्री इतने सुंदरी रूप गुण संपन्न राजपुत्री के लिए ऐसे कैंडिडेट को चुनेगा जिनका कोई घर नहीं, नदी के किनारे खड़े हैं हाथ उठाकर 10,000 साल से खड़े हैं, उनको जाकर चुने, यही मेरे योग्य बर्थ मेरे पुत्री, कितने बड़े बड़े देवता थे किसी का नहीं, ये योग्यता है चरित्र वक्ता, ये चरित्र ये कूल और सीर ये दोनों का आधार है, इसी चरित्र निर्माण होगा, लेकिन आजकल कूल सीर तो कोई समझते नहीं हो क्या शब्द है क्या चीज है, जो कोई नहीं देखते हैं आजकल, कोई वैवाहिक संबंध देखते हैं सबसे पहले जो मुख्य मुख्य बात देखते हैं क्या देखते हैं, क्या नौकरी क्या है, कितने कमाई है, अगर नौकरी नहीं है नौकरी है किसी प्रकार से यही देखना चाहिए, धन को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो पहले जमाने में जो नीति था, नीति शास्त्र कहता है कि जैसे शरीर नष्ट हो जाए तो कुछ तो समझो कुछ नष्ट हुआ, अगर धन नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, अगर शरीर तो नष्ट हो जाए सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसे माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसे मानते हैं अगर शरीर नष्ट हो गया तो कुछ नष्ट हुआ, शरीर कमी हो गया तो, लेकिन अगर शरीर नष्ट हो कुछ नहीं नष्ट हुआ, कोई काम नहीं, अगर धन नष्ट हो गया ओ सब कुछ सब नष्ट हो गया, ऐसे मानते धन को इतनी महत्ता देते हैं, चरित्र कोई महत्ता नहीं देते, क्यों नहीं महत्ता देते हैं, क्योंकि कुल परंपरा सब बिल्कुल लुप्त हो चुका है, कुल शील है ही नहीं, कोई नहीं देखते उसका कोई मान्यता नहीं, तो इस कुल को बचाने के लिए बड़े बड़े विज्ञ ऋषि वो विचार करते हैं, और इस ये इतना आवश्यकता है कुल को बचाना, और इस कुल को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी कुल में कोई कमी आ गया, कोई कुपुत्र जन्म हुआ, कोई दोष आ गया, तो सुधारने के लिए सबसे पावरफुल मेडिसिन क्या है, महामहौषधि भगवान का आश्रय, बस जितने प्रकार के संस्कार है, जितने प्रकार के उपाय है, सबसे महान उपाय है केशव आश्रय, इस कुल में ऐसे ऐसे लोगों हैं जो इसको माने इस उपाय को अपनाए तो उसको कैसे नष्ट होने दिया जाएगा, इसको नष्ट नहीं किया देने होना, तो उनको कैसे ही बचाएंगे, किसी रूप से इस कुल को बचाएंगे, एक कथा आता है, आप भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुने हैं। जगन्नाथ भगवान जो जगन्नाथ के रूप में प्रकट कराए, ये श्रेय गया महाराज इंद्रद्युम्न को। महाराज इंद्रद्युम्न और उनके रानी महारानी गुंडीचा, ये दोनों ने अवंती राज्य छोड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए अनेक कष्ट उठा करके चलते 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 उत्तर प्रदेश नीलाचल पहुंचे। यहाँ बहुत दुख हुए, कई कितने दुख उठाए उन्होंने। अंत में यज्ञ किए, यज्ञ से उनको आकाशवाणी हुआ, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, फिर उनको दारू कष्ट प्राप्त हुआ, उसमें बड़े कष्ट से निर्माण हुआ। सब कुछ ये सब करने के बाद में जब मंदिर भी निर्माण किए, कितने लागत कितने दिन लगा करके कई कल्पना है, ये सब किए करने के बाद प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा को बुलाने के, बोले इसे नटलास पुरोहित किया बुला, डायरेक्ट ब्रह्मा को बुला कर ब्राह्मण के सृष्टि जहां से हुआ, डायरेक्ट भगवान को ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी भी आए, लेकिन ब्रह्मा से बुला कर लाए तो इस ब्रह्मा जी के टाइम इस टाइम में फर्क आ गया, कई हजार युग बीत गया, तो उनका मंदिर भी कोई बेदखल हो गया, दूसरे ले गया था। ये मालिक है स्वयं उनके जगह में उन्होंने बनाए, लेकिन एक दूसरा लेकर बैठता, बोले आप हमारी उसने दे रहा सिक्योरिटी, बोले हमें एंटर नहीं करने देंगे, क्या हो गया आपका मंदिर हरी, क्या बताए जो खाता खत्म गया, दस पचास हजार युग बीत गया तो कोई माने कोई काम नहीं करेगा। तो बेचारे बोले क्या करूं, तो भगवान की इच्छा से वो एक कौवा बैठा था वहां, कल्प बट है वो बटबुल के कभी नष्ट नहीं होता, कल्प कल्प रहता है, तो उसने साखी दिया तो उनको सुने जो गाल माधव राजा था, बोले आप बोलता है कौवा के बात में क्यों से मान लू, तो कौवा ने उसका नीचे जो रोहिणी कुंड था वहां स्पर्श करके चतुर्भुज हो गया, तो बिहारी उनका इष्टदेव नारायण, तो बिहारी आप नारायण मान गया तब तो मानना पड़ेगा। तब उन्होंने फिर इंद्रद्युम्न महाराज को मुंचा मारण करे, उनको दे दिया मंदिर राज्य दिया, बोले ठीक है आपने किए। तो फिर जगन्नाथ जी को लाकर उन्होंने प्रतिष्ठा किए, ब्रह्मा ने बड़े समारोह से प्रतिष्ठा किए, प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, जाग जग सब पूर्ति हो गया, जिस दिन पूर्णाहुति हो गया सब प्रतिष्ठा उत्सव पूरा हो गया, भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, रत्न सिंहासन में बैठ करके और महाराज को इंद्रद्युम्न को बोले कि राजा इंद्रद्युम्न में आपके इतने बड़े निष्ठा इतने कष्ट इतने दिन तक तूने मेरे पीछे पड़ा मुझे प्रतिष्ठा करके ही रहा सब कुछ छोड़ करके, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहते हो, मैं आपका इच्छा पूर्ति करना चाहता हूँ, क्या इच्छा है बोलो मैं आपको पूर्ति करूँ। अभी तक इंद्रद्युम्न महाराज के कोई पुत्र संतान नहीं थे, ना कोई पुत्र ना पुत्री थे, महाराणी गुंडीचा तो ऐसा करती थी कि राजा बहुत बिजी है भगवान को प्रकट कराने के लिए, अभी प्रतिष्ठा कार्य हो गया अभी अपने घर में जाएंगे हम रहेंगे कोई हमारे पुत्र पुत्री होंगे। लेकिन जब भगवान ने बार बार प्रेरणा किए इंद्रद्युम्न को, राजा कुछ बर मांगो, महाराज इंद्र बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन का जो सबसे बड़ा इच्छा था कि मैं आपको दर्शन करूं आप प्रतिष्ठा करूं जगत के सामने आपको रखूं, तो बस मेरा इच्छा पूर्ण हो गया, बहुत बहुत कष्ट से आपने कर पाया, बस मैं आज कृतज्ञ हो चुका मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरा बदनाम होगा, तू मेरे पकड़ कर आया और मैं जैसे बल देने वाले राजा हूँ बल राज हूँ तो तू खाली हाथ नहीं जाएगा, मेरे इज्जत रखते हुए कुछ तो मांगो कुछ तो मांगो। तो महाराज बोले ठीक है आप अगर इसे जिद करते तो कुछ मांगता हूँ, मेरी इच्छा जो है पूरा करना बिल्कुल पूरा करूंगा, क्या कर इच्छा बताऊ। सबसे पहले बार मांगे इंद्रद्युम्न महाराज कि हे प्रभु अगर मुझे वरदान वर देना चाहते हो तो मुझे यही वर दीजिए, मेरा कुल लोप हो जाए, मेरे वंश में कोई पुत्र पुत्री कोई संतान उत्पन्न नहीं ना। ब्रह्मा जी भी खड़े थे, उनकी पत्नी पीछे खड़ी है महारानी गुंडीचा, हेलो बोली क्या मांगे, वो तो तुरंत रो पड़ी, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हुए, भगवान जगन्नाथ भी आश्चर्य हुए, अरे कैसा आ जाएगा, तू बोलता है कुल लोप हो जाए। तो भगवान बोले राजा तू ऐसे वर क्यों मांगा, रानी गुंडीचा रो रही है आपके वरदान मांगा सुन करके, इसे क्यों वर मांगा, क्या रहस्य है उसका, तू मांगा तो मुझे पूरा तो करना ही पड़ेगा, मैं वचनबद्ध हूं, लेकिन पूरा करने से वो ये रोगी रोएगी, अभी तो इसे पर क्यों मांगा? इंद्र महाराज कहते हैं क्योंकि मैं इसलिए वर मांगा कि अगर मैं अभी मैं झगड़ा करके उससे लिया लाल माधव से तो मेरा संपत्ति ले बैठा था, इस मंदिर को अपने अधिकार में ले गया था, तो इसलिए मैं डिसाइड किया ये मंदिर किसी का नहीं होना चाहिए, केवल आपका ही होना चाहिए, आप सारे संसार का होना चाहिए और किसी का नहीं। अगर मेरे परिवार में कोई उत्पन्न होगा तब तो बोलेगा मेरे बाप की संपत्ति है ना, तो मेरा संपत्ति करके अधिकार करेगा, तो इसलिए कोई नहीं होना चाहिए और केवल आप ही सारे संसार का होना चाहिए, आपका करके कोई नहीं बोल सकता आपको, आप सभी के इतने प्रकार इतने बड़े उदार भाव था, अदान्य भाव था, तो सुनकर भगवान भी रो पड़े, वाह भक्त का चित्त कितने उदार होता। तो उसने देखे गुणीचा माता रो रही थी, बोले देवी आप रो मत, महाराज इंद्रदुम्न के इतने महान है, तो आपने स्वार्थक बलिदान देकर के जगत कल्याण के लिए ईसा वर मांगा, लेकिन मैं भी उनका वर तो ईसा तो पूर्ण करता हूँ, लेकिन आपकी ईसा भी पूर्ण करूंगा, चिंता मत करो। क्या पूर्ण करोगे? ना तुम्हारा पुत्र होता कैसा पुत्र होता क्या पुत्र होता पता नहीं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ बनी बनाए रेडीमेड पुत्र मिलते, मैं आपके एक पुत्र हूँ, मेरे भाई एक लड़का है और एक बहन, तीनों दो लड़के एक लड़की आपके बनी बनाए रेडीमेड, वो स्वीकार किए, उनीचा महारानी को मां के रूप में स्वीकार किए। तो किसी को आप मां करके मानेंगे, आपने तो मां है, बोले जसोदा देवी आप मां है, बोले तुम्हें भी तो मां के लिए सहायता करो, इसलिए मासी मानते हैं, मां के बहन मासी, तो गुणीचा मां मासी बड़ी इसलिए बोलते हैं उसको। तो गुणीचा देवी बोले ठीक है, बहुत प्रसन्न हो गई, बोले अच्छा आप मेरे बेटा ना, बेटा बन गया, बनेगा क्या, बन ही गया। तो थोड़ी देर प्रश्न फिर रोने लगे, बोले यार ना क्या क्यों रो रहे ना, आप बेटा बनोगे तो बोल देता है किसे मान लू, अरे आप इतने बड़े ठाट फाट इतने श्री मंदिर में बैठते थे, इतने भोग खाते ये करते, मेरे बेटा मैं तो रहता हूँ, मेरा जो कुटिया लगाया था जो मुंचा मंदिर है ना वहीं रहते, वही जन्म वेदी है, निर्माण वही हुआ था भगवान के, बोले मैं तो मेरा भवन तो यहाँ है, यहाँ कोई लड़का नहीं तो यहाँ बैठेगा, मैं तो यहाँ अकेला रहूंगा, और पुत्र का जो असली कर्म है तो थोड़ी करेगा न, क्या कर्म है न, पुत्र का कर्म है हम मर मिट जाए, हमको पिंड दान करे साधा करे हमारा, तू तो करेगा दुनिया सारी तुझे पूजा करे, तू क्या सत्यवाद करेगा, तू तो विग्रह बनकर बैठा है, तो केवल बाप बोल दिया मेरा बेटा बन जाएगा, इससे थोड़ी काम चलेगा, हमारा बेटा होता हमारा साधा क्रिया करता, हमारा कुल परंपरा रहता। बोले माता जी मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आपके बेटा होता कब तक साधा करता तो पता नहीं, उनका बेटा फिर कर पाते नहीं कर पाते, कि एक बार जाए गया मैं थोक में करती हो तो फिर नहीं करते, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक प्रतिवर्ष आपके तिथि में मैं पिंडदान करूंगा, और अभी भी जगन्नाथ जी के जो वेष होते हैं 365 दिन वाला जो वेष, एक वैसे श्राद्ध वेश, तो विशेष हाथ में बटुक कुछ बटुक पहन करके जेनेऊ डाल करके पगड़ी बांध करके पिंडदान करते हैं जिस दिन उनका तिथि होता है करते हैं, तो भगवान जब वचन दिए होंगे मिटेगा नहीं, करते ही रहेंगे, पता नहीं कितने कल्प युग से करते हैं, करते ही रहेंगे, हमारे जैसे ऐसे लड़के तो नहीं करेंगे, लेकिन वो करते हैं। तो तुम सोना सा चुना मैं अवश्य करूंगा, वचन देता हूँ आपको, मैं पिंडदान करूंगा, हम दोनों पिंडदान करोंगे, इधर रहा लेकिन मेरे घर में मैं तो अभी हमारा पुत्र बेटा होता कभी कोई माँ के पास आता, बोले मैं जब वचन देता हूँ मैं आऊंगा, आपका दुख यही था ना कि मुझे जब आप बना रहे थे मुझे जन्म देते समय में 21 दिन का टाइम था, तो आपने 12-14 दिन से निकाल दिए और जो 7-8 दिन बाकी रह गया, ऐसे दुखी थे अरे कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ मेरा लड़का, ऐसे हुआ, तो मैं हर साल एक हफ्ता आपके पास आकर रहूंगा, इसीलिए आते हैं रजा तभी वहां ना करते, वहां के घर में रहने वचन दिए उन्होंने, इसलिए आते। तो इसलिए भगवान भी जो मांग लेता है वरदान की कुल लोग पहुंचा उनके कुल बचाने के लिए भगवान उनके कुल के रूप में दयाल बनकर आ जाते हैं रखाने के लिए। कितने उदाहरण देखेंगे, कुरु और पांडव लड़ाई किया अपने परिवार दोनों में, लड़ाई करके कुरु तो पूरे नाश हो गए, सारे सेंचुरी ऑल आउट हो गए, कोई नहीं बचे है ना, 16 लड़के थे सारे ऑल आउट हो गए, और बदमाश दुर्योधन मरते मरते उनके सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को, उन्होंने प्रमिस किया मैंने पांडव वंश ध्वंस कर दूंगा और गया रात में जाकर बोला सोए हुए मार दूंगा, इसे तो मार नहीं सकता हूँ, रह के मार नहीं पाया, सोते सोते मार दूंगा, जाकर के सोते सोते मारा भी पांडव के नगर उनके पास लड़के को मिला। अरे तो बोला भाई काम हो गया, मारा सही लेकिन वो उनके लड़के को मारा, पांडव वंश तो मरे नहीं, पांडव तो बचे रहे और उनके वंश अभी अभिमन्यु के पुत्र पुत्रा के गर्भ में कोई पुत्र बढ़ रहा। तो इसलिए इतनी बदमाश था, संतान मिंजम कुरुपांडवाना, वो कुल को नष्ट करने के लिए अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया कि उतना के गर्भ में जाकर के जो संतान गर्भस्थ शिशु को नाश करते, ब्रह्मास्त्र तो खेल तो होगा ही नहीं, ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, उतरा ने केशव आश्रय भगवान की शरण में आई, पाही पाही महाजोगिन उनके शरण में आई तो हुआ काम, ब्रह्मास्त्र से अमोघ अस्त्र भी साइड हो गया। भगवान बोले अरे मेरे शरण में आया फेल कैसे ये हो सकता, ब्रह्मास्त्र भी फेल, भगवान ने गर्भ के प्रवेश करके इस कुल के नायक को बचाए बचाए। तो अगर कभी कभी आप भगवान के आश्रय लेते हैं तो कोई ब्रह्मास्त्र किसी प्रकार पासपोर्ट आदि अस्त्र कोई काम नहीं करेगा, भगवान स्वयं आकर के उसको निवारण करेंगे और रक्षा करेंगे। तो आप बोलेंगे लेकिन कोई होते हैं जिसे शादी नहीं करते हैं तो उनका कुल कैसे होगा, बिल्कुल खत्म हो गया, बोलते नहीं, जो चाहते हैं जिस राजा परिवार है राजर्षि जो भक्त हैं जो परंपरा बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए भगवान तो व्यवस्था करके बनाए रखेंगे, कुल लोग नहीं करने देंगे मेंटेन करते हैं, और जो लोग वैरागी हैं उनके कुल भी रखा करते हैं कैसे, बोलते हैं कि असली कुल तो भगवान से चला है, चार संप्रदाय ये है कुल, बोले इस संप्रदाय का आश्रय लेते हैं, आश्रय लिए बिना तो माना नहीं जाएगा, उसी कुल को मेंटेन करके रखें, इसलिए तो भगवत गीता कहे भगवान, बोले भगवत गीता में तो पहले सूर्यदेव को भी कहा था अभी स्वर्ण को उसके वो इनको ग्रहण कर, लेकिन काल के प्रभाव से नष्ट हो चुका था, फिर दोबारा मुझे कहना पड़ता है, ऐसे मैं दोबारा कहता हूँ क्योंकि बार बार नष्ट हो जाता है आना पड़ता है, लेकिन ये जो राजसी परंपरा वो नष्ट हो जाए लेकिन ब्रह्मर्षि परंपरा नष्ट नहीं होता, ब्रह्मर्षि की जो चार परंपरा है चार संप्रदाय है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान का आश्रय लिए हैं, उस कुल को इस परंपरा को चलाए रखना ये भगवान को उत्तरदायित्व है, जब तक इसमें कोई भजन चलता रहेगा भगवान का आश्रय लेते रहेंगे वो कुल मेंटेन होता रहेगा। तो जो लोग अपने तथाकथित कुल को छोड़ करके इसी कुल में आश्रय लिए अच्युत आश्रय ग्रहण किए तो कभी उनका कुल को उसको बचाएंगे भगवान, तो हर प्रकार से भगवान ने कुल रखा करते हैं, करते हैं कब करते हैं जब उनका आश्रय लिया जाए, कैसे आश्रय लिया जाए, घर बैठे चुपचाप बढ़िया से गरम गरम बनाकर खाए घोल लगा करके हमने आश्रय लिए नहीं, जब तक बैल भी घर बैठकर खूब भजन को किए होंगे तब तक नहीं होना, सर्वधर्मान परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, ये है सारे छोड़ करके मेरे शरण में आओ आश्रय लो तब मैं काम करूंगा, हम तम सब पापे भी हो मुख्य ईसानी मास्टर फिर गर्वत मैं खुद अच्छा दूंगा सारे पाप सारे दोष से सब बचा दूंगा तुझे, लेकिन सारे छोड़ के मेरे पास आएगा तभी ना, जब हम माना छोड़ कर गए तब क्रिया शुरू हो गया, ऐसे हमको भी तथा कथित आसक्ति आदि को त्याग करके अगर भगवान केशव के आश्रय लेंगे तो हमारे कुल भी नष्ट नहीं होने दिया जाए, किसी भी प्रकार से भगवान अपने ऊपर सुदायित्व को लेकर के उस रक्षा करेंगे, किए हैं करते रहते ही हैं, है ना, ये भगवान की मानवता है। इसीलिए ऋषि मुनि के अंदर ये जो विचार आया कि राजर्षि अंग का वंश लोप नहीं होना चाहिए, विचार आया कहां से, वो तो और भी कुछ उपाय कर सकते थे, नहीं नहीं क्योंकि मूल से अंग महाराज जब सब छोड़कर भगवान के आश्रय में चले गए हैं इसी कारण से प्रक्रिया बनता है, यद्यपि उनको मार दिए उनकी डेड बॉडी को ही मिटने दिया गया, ये बुद्धि कहां से आए, तो मर जाने के बाद पर तो संस्कार करना चाहिए नहीं तो रखी तो बाद में काम है, ये सारे प्लान भगवान करे, क्योंकि कोई सब छोड़कर उनके शरण में गया तो इसे काम निकालना है, ये दायित्व उनका हो। बोले आप डरो मत, मैं कराऊंगा उनके ऊपर लेकर के। किसी के तो सुनीता के बुद्धि से भी लाए कि नहीं रखो, उनको काम में आएगा। ऋषि मुनियों के मन में आएगा, उनको जब देखो क्या चला है अराजक का, अब जाकर कुछ करो। दूसरी राजा की मत बनाने, उसी के शरीर पर आंच लगा के करो। किसी भी प्रकार से भगवान ने अपने कुल परंपरा को बचाते हैं, वो नहीं नष्ट होने देंगे। नष्ट नहीं होने देंगे, उसका महान जो कारण है ये है कि भगवान के आश्रय ग्रहण करना, और वही है अमोघ। जो अमोघ द्वितीय कारण है, अमोघ उपाय है, तो उपाय है क्या? भगवान की आश्रय, और आश्रय लेने का विधि आपको पता है, भजन करना है अनासक्त होकर के। इस प्रकार के आश्रय को ले तो उनका कुल, उनकी इच्छा कभी भी नष्ट नहीं होगा। हम भले नष्ट हो जाए, ऋषि मुनि देवता लोग आकर के भगवान ने करवाएंगे, किसी न किसी प्रकार से करवाएंगे। डेढ़ बड़ी से पैदा कर देंगे, अति अद्भुत भगवान के लिए आश्चर्य की बात कुछ नहीं। असंभव को संभव करने वाले हैं, अगर कोई उनका शरण ले तो भगवान ने जाने देकर कहते हैं तू आश्चर्य क्यों करता, मेरे शरण लेकर तो देखो, जो कभी सोचा ही नहीं सुना नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा। ये कभी आप सुने ना सोचे, डेढ़ बड़ी मर चुका है कई दिन से, उनके शरीर से घर प्रकट होंगे कर दी। यही है भगवान की शरण लेने का प्रभाव। तो इसमें से हमको ये सीखा लेना चाहिए, बहन का डेढ़ बड़ी से कोई निकला नहीं निकला ये पता नहीं, हमारे लिए यही बड़े सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम भगवान की शरण हर प्रकार से ग्रहण करते हैं तो हमारा जो भी परंपरा है, कुल है, हमारा जो हर प्रकार से रक्षा करना, योग खेम को धारण करना, ये भगवान आपने ऊपर लेते हैं, वो करते हैं और किए हैं, ये इसका प्रमाण। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? ग्रंथराशि भागवत महापुराण की
अच्छा।